आपका आज का दिन कल से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आज एक नया दिन है, इसलिए आपको भी नया होना चाहिए है। तहरान शहर धुएं और ट्रैफिक के बावजूद भी आपके दिन को अच्छा बना सकता है, मगर शर्त यह है कि आप सिर्फ अपनी फिक्र ना करें, दूसरे की भी फिक्र करें।
हेलो, सलाम हाजी, आप
कहाँ हो तुम?
रास्ते में हूँ, मामा समझी है कुछ? क्या कह रही थी आप?
कहाँ जा रहे हो?
मैं अभी फरीदा के घर जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ कि उसने मामा को तो कुछ नहीं बताया है।
उसका पता मुझे।
पता किस लिए? मगर आपने नहीं कहा था कि मामा कुछ ना समझे?
मुझे पता तो, अब वहाँ खड़े होगा मेरा इंतजार। जब तक मैं ना हूँ अंदर मत जाना।
मगर क्यों?
सादा सवाल मत चलाओ मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ वहाँ, तो मुझे एड्रेस से समझता।
पहला फ्लैट चौथी मंजिल था पापा। एक मिनट रुकिए, आप क्या कहेंगे जाकर?
तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मैं बात करूंगा।
पापा, मामा ने आपसे क्या कहा है?
तुम्हारी कोई बात नहीं।
सही बताए, वो फरीदा का मसला समझ गई है क्या?
काश समझ गई।
बस फिर क्या मसला है?
कौन सी मंजिल पर जाना?
चौथी।
आप कौन है भाई?
हाजी रजा।
जी फरमाइए, क्या काम है आपको?
अंदर आ सकता हूँ मैं?
वो खास बात है क्या? आप अंदर क्यों आना चाहते हैं? सुना आपने मैंने क्या कहा है?
तुमसे कुछ बातें करनी है।
हाजी साहब, आप पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं।
मैं अपने अल्फाज वापस लेने आया हूँ। अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में एक आदमी बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, ये सही नहीं है। अगर बदतमीजी करनी है तो यहीं खड़े रहो, ऊपर जाएंगे तो सिर्फ मैं बोलूंगा, अपनी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी, समझे?
आपने बताया नहीं कि लड़का भी साथ आ रहा है?
वो बातें सुनने के लिए आया है, मैं इसकी तरफ से बात करूं। इजाजत।
वहीं बैठ जाए हाजी साहब।
तुम्हारी तबीयत कैसी है?
ठीक है।
चेहरे से तो ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक भी है या?
मैं ठीक हूँ, आप बात करें।
हमारी मुलाकात बड़े गलत मौके पे हुई है। तुम्हें भी महसूस हुआ होगा कि मेरे बुरे अल्फाज इसी का नतीजा थे।
जी कोई मसला नहीं, मुझे आपके खानदान की बुरी भरी बातें सुनने की आदत पड़ गई है।
तुम्हारा हक है कि तुम गुस्सा हो। मैं और मसूद तुमसे बुरी तरह पेश आए, हम इसीलिए आए हैं कि अपनी गलती का इजाला कर सकें। मैं तुमसे आराम से बात करना चाहता हूँ फरीदा बेटी। मैंने और मसूद ने गलती की है, लेकिन तुम्हारी भी कुछ बातें गलत थी।
क्यों? क्योंकि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ इसलिए?
नहीं, तुम्हारी कुछ पुरानी गलतियाँ। मेरा मतलब मसूद से तुमने खुफिया शादी की और 2 साल तक हमसे छुप कर तुम जिंदगी गुजारती रही अपनी। और सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूँ वो थी तुम्हारा नशा करना।
हाजी साहब, मैं भी उन दोनों गलतियों का अजाला करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपने बताई थी, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं अब मसूद के साथ रहना नहीं चाहती, चाहे अच्छा लगे या बुरा। मैं नशे को छोड़ चुकी हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे के बारे में सोचना गलती है तो आप समझते रहें, और अगर आप ये समझते हैं कि आप उसे मार डालेंगे तो ये आपकी गलती है। मसूद तो पहले दिन से ही इस बच्चे का दुश्मन बना हुआ है, और अब आप भी। आप जो समझते हैं समझते रहे, लेकिन ये हकीकत है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ।
लेकिन मसूद को भी अपने बच्चे से नफरत नहीं हो सकती। हम जिस गलती का इजाला करना है वो यही गलती है। हम भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा जिंदा रहे और हंसता खेलता इस दुनिया में आए। बाबा चुप खड़े रहो। मसूद जिस चीज का हम इजाला करना है वो यही चीज है, और जिस चीज का तुम इजाला करोगी वो है नशा। मैं ये चाहता हूं कि दोबारा तुम कभी उस नशे की तरफ न जाओ। फिर हम तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे साथ और बच्चे के साथ।
मैं अब दोबारा उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
अच्छा, अच्छी बात है बेटी। इस बच्चे का हक है कि
वो बच्चा अभी भी जालिम नहीं है। कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल मजदूर है अपनी माँ की तरह।
मैंने कहा चुप खड़े रहो।
मैं चुप नहीं रह सकता। मैं एक नशा करने वाली का बच्चा नहीं चाहता हूँ, ना बच्चा ना उसकी माँ को चाहता हूँ।
पहली बात तो ये कि तुम नहीं कह सकते कि बच्चे में नुकसान है या नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे में कोई नुकसान भी तो कोई उसे मार नहीं सकता, ना तुम ना मैं।
किसने कहा है बाबा, किसने कहा है? कौन इस हक को मुझसे छीन सकता है? मैं उसका बाप हूँ।
खुदा और शरम। हाँ ठीक है कि तुम बाप हो, लेकिन तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है।
अगर शराय कहती है तो मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, खुदा कहे तब भी।
क्या समझते हो अपने आप को जितनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हें कैसे खींचे और कमीन इंसान जो किए हुए काम जिम्मेदारियां उठाने से इंकार करो।
मैं नहीं चाहता तुमने क्या मनसूबा बनाया। मैं साफ कर चुका फरीदा बेटी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
बैठ जाओ बेटी, बैठो। मैं हूं इस बच्चे का जिम्मेदार, तुम इसका और अपना बेहद ख्याल रखो। कुछ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ बच्चे के बारे में सोचो और अपने बारे में समझ गई। किसी चीज की फिक्र न करना, न मसूद की बातों की, न ही किसी और चीज की। सिर्फ बच्चे की फिक्र करो। सबसे मुश्किल काम खुद को नशे से रोकना है बेटी। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है जो इश्क तुम्हें बच्चे से है वो तुम्हारी मदद करेगा। कल मेरे दफ्तर आ जाना,
किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेके चलूं ताकि तुम उसकी निगरानी में बाकी दिन गुजारो।
जी अच्छा।
ये पैसे रख लो।
बहुत शुक्रिया हाजी साहब, पैसे हैं मेरे पास।
मुझे पता है, फिर भी रख लो।
मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास?
जी है।
कभी कोई काम हो तो फौरन मुझे फोन करना, किसी भी वक्त, ठीक है?
जी जरूर।
कल जो मैंने बातें की थी तुमसे, मुझे माफ कर दो और उसको भूल जाओ।
हाजी साहब ऐसे ना बोले, बल्कि मुझे भी माफ कर दीजिए।
खुदा हाफिज़।
साहब हैं वो कह रहे हैं कि अफियान साहब की तरफ से फोन कर रहे हैं।
कॉल दो।
हेलो,
फरमाइए।
हामिद साहब
जी बात कर रहा हूँ, आप ठीक हैं?
कैसे हो दोस्त? मेरे हाथ में आपका चेक है जिस पर आपकी दरख्वास्त।
जी जी जी, वो पैसे जो अफियान साहब को देने थे ना, वो दरअसल अफियान साहब
ने चेक हमें दे दिया है कि तुम पैसे दे दो, और मुझे लोग यहाँ काला टाइगर के नाम से जानते हैं। अगर वो चेक कैश ना हुआ तो हम गैर कानूनी इकदाम शुरू कर देंगे। हफ्ते का दिन आखिरी है तुम्हारे पास, अगर ये चेक कैश ना हुआ तो फिर देखना मैं क्या करूँगा।
सर आवा सरमद आए हैं।
सलाम। क्या हाल है?
खराब है यार।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, हाजी साहब वजीद है कि वो बच्चा रखना चाहते हैं।
तुमने बताया नहीं कि वो नशा करती है?
क्यों नहीं बताया, सब बताया है। कहने लगे बच्चा अगर कमजोर है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। बोलते हैं कि बच्चा जाया करना इंसान का कत्ल है। उनसे बहुत बहस की मैंने मगर कुछ नहीं हुआ। अभी मैं उनसे बात करके आ रहा हूँ। हमें पहली दफा मैंने उनके सामने खड़ी होने की हिम्मत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
चलो अच्छा हो ये बात तुमको समझ में आ गई। फरीदा वो बच्चा रखना नहीं चाहती, सिर्फ तुमको तंग करना चाहती।
तंग करने की बात क्या है हामिद, फरीदा को वाकई पैसे नहीं चाहिए। अभी बाबा के साथ उसके घर गए हुए थे, उसने नशा छोड़ दिया है हामिद, बच्चे की खातिर। बच्चे के लिए हामिद, अपनी सारी जिंदगी उसकी बच्चे के लिए हुई है।
अगर ऐसा फिर तो तुम बर्बाद हो गए।
हाँ
देखो, उससे दोस्ती कर लो, उससे बोलो कि मैं शर्मिंदा हूँ जो बातें मैंने हाजी साहब से की, और उससे बोलो कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तलाक नहीं देना चाहता। अपने बाबा को ये बोलो, और तुम फरीदा के साथ रहो और उसको समझाओ कि बच्चे की फिक्र छोड़ दो। मसला उसको ये कहो कि नजीस बेगम को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने मासूमा की ज़िंदगी में शादी कर ली थी, और अगर बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा। उसको बोलो कभी वक्त है कि वो बच्चे के बारे में सही फैसला कर ले।
नहीं करेगी हामिद, वो इन बातों से ज्यादा तेज है।
हाँ मगर कोई ऐसी अदाकारी करो कि वो यकीन करे।
वो यकीन नहीं करेगी हामिद, मुझे पता है कि वो मेरे साथ मजीद जिंदगी गुजारने पर राजी नहीं होगी। वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और मुझसे नफरत, उसी तरह जिस तरह मैं उससे करता हूँ।
मैं इन बातों का नहीं मानता भाई महसूद। अगर ये वही फरीदा जिसको मैं जानता हूँ तो ये सिर्फ पैसों की भूखी है।
मुझे मामा के अल्फाज याद है। मामा कहती है कि जब एक औरत माँ बनती है तो वो बिल्कुल बदल जाती है, जैसे फरीदा इस वक्त बिल्कुल बदल चुकी है। पैसों के लिए नहीं हामिद, अपने बच्चे की खातिर वो कुछ नहीं करेगी।
हीरोइन छोड़ चुकी है, लेकिन नशे में लग रही थी ना?
हाँ नशे में थी।
तुम्हारी माँ ठीक कहती है। मैं बहुत सी ऐसी माओं को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों के खातिर अपनी जानें दे दी, इसीलिए कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे चलना था। लेकिन ऐसी माओं को भी जानता हूँ जो अपने बच्चों को किराए पर दे देती हैं या फरोख्त कर देती हैं सिर्फ चंद पैसों के खातिर।
हामिद, तुमसे कहा तो फरीदा ने छोड़ दिया,
लेकिन नशे में थी ना?
नशा था मगर क्या,
हजार रास्ते हैं मेरे पास किसी भी नशे को दोबारा नशे से रखता। मेरा एक कामरान नाम का नशे दोस्त हर बार कहता है कि मैं नशा छोड़ दूंगा। वो मुझसे हजार दफा ये बात बोल चुका कि मैंने एक दफा तो वाकई में छोड़ दी।
तुम्हारा मतलब क्या है? हम फरीदा को दोबारा नशे बना देंगे
और ये काम कोई उसकी करीबी दोस्ती कर सकती है। वो दोबारा से एक नशे माँ कहलाएगी, समझे? एक ऐसी औरत जो माँ बनने के काबिल है।
फिर हमारा बच्चे वाला मामला बहुत आसान हो जाएगा मसूद। तुमने फिर शुरू कर दी हमें, ये बेगैरती की बातें तुम नहीं समझते?
बेगैरती की बात तो यह कि फरीदा बेगम आखिरी उम्र तक तुम्हारे साथ चिपकी रहे।
हमें नहीं कर सकता, तुम्हें उसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम कहते हो कि उसको नशे पर लगा दो, कि तुम क्या कह रहे हो?
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मसूद। मैं यकीन से कहता हूँ कि फरीदा दोबारा नशे के पीछे जरूर जाएगी। आज या कल तुम देख लेना, ये मुमकिन है कि बच्चा पैदा करने के बाद दोबारा नशे की तरफ जाए, लेकिन उस वक्त तीर कमान से निकल चुका होगा। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वो इससे भी बड़ा गुनाह होगा। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि फरीदा बच्चा पैदा करने के बाद फिर नशे में नजर आए, उस वक्त तुम भी बदनाम होगे और बच्चा भी। एक ऐसी माँ जो शौहर से अलग रहती है और नशा करती है, ये सबसे बड़ा गुनाह है।
खुदा की लानत हो तुम पे फरीदा, क्या भला मेरे सर पे खड़ी कर दी है तुमने? खुदा का वास्ता तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? खुदा की लानत हो तुम पर।
ये तुम्हारे बस का काम नहीं है मसूद। मैंने जो मशवरा दिया है वो सबसे बेहतर है। हम फरीदा को दोबारा नशे की तरफ लेकर आएंगे और एक दो हफ्ते में नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम कामयाब हो गए तो सारे मसाले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उसको उसके हाल पे छोड़ दो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम अभी जितना सोचोगे तुम्हारे दिमाग में वसवसे ही आएंगे और कुछ भी नहीं। मैं अभी सुराग लगा रहा हूँ उस औरत का जिससे वो नशा खरीद के पिया करती थी। तुम बस आराम करो, तुम परेशान मत हो, ये काम मुझे दे दो, मैं कर दूंगा।
मुझे पता है मसूद अब वक्त नहीं है, लेकिन किसका वक्त नहीं?
मैंने 100 मिलियन का उधार लिया हुआ मसूद, और उस बंदे ने मेरा चेक उठा के एक बदमाश पार्टी को दे दिया, और उस बदमाश का मेरे पास फोन भी आया था, बहुत खतरनाक बातें कर रहा था। वो 200 मिलियन जो तुमने फरीदा के लिए रखे हैं, अगर मसला ना हो तो एक हफ्ते के लिए वो रकम मुझे दे दो ताकि मैं अपना चेक तो वापस ले लूँ।
हामिद, मैंने इस चेक पे 30% उधार ले लिया है ताकि फरीदा को दे सकूँ।
उधार का कोई मसला नहीं है मेरे लिए, एक हफ्ते 10 दिन या महीने में सब कुछ वापस कर दूँगा। मैं तुम्हें असल रकम मुनाफे के साथ लौटा दूंगा, और ये मैं तुम्हें चेक लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम मुतमईन रहो।
ये क्या कर रहे हो तुम हामिद? मसलन अगर तुम्हारा चेक पास ना हुआ तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगा, या चेक मैं किसी गुंडे को दे दूंगा।
पास हो जाएगा मसूद, मैं बैठा हूं ना।
कल 100 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा ताकि तुम्हारे हाथ में भी चेक रहे।
मैं तुम्हारा गुलाम हूं मसूद, तुमने जो मुझ पे एहसान किया उसका बदला मैं नहीं चुका सकूंगा।
फरीदा का फिर क्या करूं मैं? इससे पहले कि मेरी इज्जत मेरी माँ के सामने बारह हो जाए कुछ करना होगा मुझे।
ज्यादा सोचो नहीं तुम, इत्मीनान रखो मैं कुछ करूंगा। तुम अभी खड़े हो और अपने बाबा के पास जाओ और उनको बोलो कि मैं माजत चाहता हूँ बाबा। उनको बोलो कि मैं बच्चे को भी चाहता हूँ और फरीदा को भी, मगर शर्त यह है कि फरीदा दोबारा नशा ना करे। लेकिन अगर उसने दोबारा से नशा कर लिया तो फिर मैं फरीदा को लाजमी तलाक देकर रहूंगा और बच्चे को भी मार दूंगा।
वो कभी नहीं मानेगी हामिद, वो बच्चे के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है।
पहले तुम उनको इस बात पे राजी करो कि अगर फरीदा ने दोबारा नशा शुरू किया तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, और वो इस बात पे नाराज नहीं होंगे। उनको कहो कि मुझे यकीन है कि फरीदा दोबारा ऐसा नहीं करेगी, और बहाना ये करो कि इस मामले को किसी तरह मामा से छुपा के रखना है, और फरीदा का तो कोई मसला ही नहीं है। फिर इस तरह तुम्हारी इज्जत कम अज कम मामा के सामने तो बची रहेगी, बस थोड़े दिन की बात है। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि फरीदा दोबारा नशे की तरफ आए, और जैसे ही फरीदा ने नशे को दोबारा शुरू किया तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे।
परवरदिगार, तू मेरी खताओं को जो गफलत से मुझसे हुई है वो फरमा दे। मैं बहुत मजबूर हूँ, तू ही ताकतवर है।
फरीदा की खातिर रो रही हैं?
आप फरीदा की खातिर, तुम्हारी खातिर, और सबसे ज्यादा मैं अपनी खातिर रो रहा हूं।
अब मुझे मत कहना कि माफ कर दे, मैं भी तो हर जैसे गुनाहगार इंसान, खुदा से माफी मांगता हूं।
मैं आज आपके सामने खड़ा हो गया हूं इसलिए कि मुझे माफ कर दे। गलत किया मैंने इसलिए कि मुझे माफ कर दे।
मेरे सामने खड़े होने का समझ इससे भी बदतर यह था कि नाउज़ुबिल्लाह तुम खुदा के सामने खड़े हो।
मैं उस वक्त गुस्से में आ गया था, ना जाने क्या कुछ उल्टा सीधा बोल दिया मैंने। मैं क्या करूं, मैं क्या मुंह लेकर खुदा के सामने खड़ा हो जाऊं।
कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो अपने मालिक को भौंकना शुरू कर देते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए कि पागल ना हो।
क्या खुदा ने कहा है कि मैं एक नशा करने वाली को रखूं? बाबा खुदा की यही मर्जी है कि मैं एक नशा करने वाली औरत से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, निजात पाना चाह रहा हूँ, क्या यही मेरा गुनाह है?
खुदा ने कहा है कि हम मुसलमान गरीबों के लिए अपना दिल बड़ा रखें, चाहे हमारी खुशी हो या ना हो। और तुम्हारी बीवी है मसूद, उसे निजात दिलाते हो जहर से, उसको ऐसे न छोड़ो, न ही उसको अभी तलाक दो, सुकून से बैठो।
बेहतर, बहुत अच्छा, मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वाकई छोड़ना चाहती है, लेकिन मुझे यकीन है नहीं छोड़ेगी, अब कभी नहीं छोड़ सकती।
ऐसे ना बोलो बेटा, इंशाल्लाह वो छोड़ देगी। कहो इंशाल्लाह मेरा बच्चा सही होगा, फरीदा को माफ कर दो और उसकी मदद करो, फिर इंशाल्लाह खुदा तुम्हारे साथ होगा।
बेहतर जी, अच्छा उसे एक और मौका दूंगा मैं। लेकिन अगर खुदा ना करे किसी मौके पर उसने दोबारा नशा शुरू किया तो फिर, कहा खुदा ना करे, उस वक्त मुझसे मत कहिएगा कि मैं रुक जाऊं, तब मुझे इजाजत दे के मैं उसे छोड़ दूं। जब तक यकीन नहीं हो जाता आपसे दरख्वास्त है कि फरीदा के बारे में मामा को मत बताइए, कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दीजिए। जब हम मुतमईन हो जाएं तो बेशक उन्हें बता दीजिएगा।
हम में से बहुत से लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जो खुदा जन्नत तो सब आखिरत और कयामत पर यकीन रखते हैं मगर दिल से ईमान नहीं रखते। ऐसे लोग जब किसी सख्ती का शिकार होते हैं तो खुदा की तरफ लौटते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो रोज़ कयामत की याद से भी गाफिल हैं, गुनाह करते हैं लेकिन उसके जाले से गाफिल हैं। लेकिन एक दिन आएगा महसूस, ऐसा दिन जिसकी रात नहीं होगी वो बहुत लंबा दिन होगा। तुमको खुदा का वास्ता दे दे, इंसान बन जाओ।
शुरू के 6 हफ्ते दौरान हमल जिनीन के आजा बन रहे होते हैं और इस दौरान दवा लेना बहुत ज्यादा खतरनाक असरात रखता है। अगर माँ दौरान हमल इन नुकात पर तवज्जो दे तो पैदाइश का मसला आसान हो जाता है। पहला ये कि माँ हमल के दौरान किसी के भी कहने पे कोई दवा इस्तेमाल ना करे। हमला माँ को फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए कि इसे यकीन हो जाए कि वो हमला है। हर माँ को खौफ होता है कि इसका बच्चा गैर तबीयी या बदशकल या नाफिस पैदा ना हो। इसी वजह से पहला सवाल हर माँ के पैदाइश के बाद ये सवाल होता है कि मेरा बच्चा सही है, और दूसरा सवाल
खुदाया मेरी मदद कर, मुझे ताकत दे, मुझे इससे बचा ले या खुदा, मेरी मदद कर, खुदाया मेरी मदद कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या करीम, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अपनी रहमतों की बारिश फरमा दे। बेशक हमें तेरी तरफ लौट के जाना है, हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं। मासूमा को जन्नत फिरदौस में जगा दे, उसकी रूह को सुकून दे। हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें फौसों से बेहतर जगह दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि या गफूर या गफ्फार। तुम यहाँ क्यों बैठे हो?
बस ऐसी थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आ गया था।
मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई रजा।
पहले क्या तबीयत खराब थी तुम्हारी?
हाँ बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन जब से मैंने तुमसे बात की है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया।
तुमने एक बार मुझे सहारा दिया था, अगर तुम न उठाती तो मैं कब का गिर गया होता।
इसका मतलब है कि अब तुम भी ठीक हो गए हो रजा। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
हाँ है, सही है।
अगर उस खता और गुनाह का इजाला कर दिया है तो फिर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए।
परेशान नहीं हूँ बेगम, दिल परेशान है, अपने आप से परेशान हूँ।
मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गुनाह क्या था रजा, और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन जिस वक्त खुदा हम सबको बख्श देता है तो बहुत ही बुरी बात है कि हम खुद को ना बख्शें।
यही सारी सोचें हैं कि अगर मुझे तुम्हारी जैसी दीनदार बीवी न मिलती तो।